भारत से ऑस्ट्रेलिया आने वाले माइग्रेंट्स के लिए एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो है अंग्रेजी का टेस्ट। और अंग्रेजी टेस्ट भी अगर आपका प्रोफेशन नर्सिंग, मेडिसिन या फिजियोथेरेपी या इसी तरह का कुछ है, तो आपके लिए एक खास टेस्ट होता है ओएटी। अब ओएटी के टेस्ट को क्लियर करना भी कुछ बहुत आसान तो होता नहीं है, मगर हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, गुरलीन खैरा। गुरलीन खैरा के लिए ये ओएटी का टेस्ट पास करना करवाना बाएं हाथ का खेल जैसा है। आखिर क्यों है ये ऐसा? वो इसलिए कि ओईटी ऑस्ट्रेलिया ने कुछ ट्रेनर्स के लिए स्पेशल एक ट्रेनिंग कोर्स बनाया, और वो कोर्स पिछले मई में शुरू किया गया था, और उस कोर्स को दुनिया भर में सिर्फ 5 लोग पास कर पाए हैं अब तक, और उनमें से एक गुरलीन खैरा भी हैं, और एशिया में अकेली गुरलीन हैं जिन्होंने ये ट्रेनिंग टेस्ट पास किया है। और वो बता सकती हैं कि अगर आपको ओएटी टेस्ट पास करना है तो उसकी तरकीबें क्या हैं, क्या गुर आपको अपनाने चाहिए। गुरलीन, SBS रेडियो हिंदी पर आपका स्वागत है।
थैंक यू।
भाई, आप जब इतनी जानकार हैं तो ये बताइए कि ये जानकारी इकट्ठा करने का दौर कैसे शुरू किया? मुझे ये भी पता चला कि आप ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पर आई थी।
जी हाँ, मैं 2010 में यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न आई थी पढ़ने के लिए। मास्टर्स ऑफ फूड साइंस मैंने यहाँ से कंप्लीट किया था,
अच्छा।
एंड मैंने यहाँ पे काम भी किया है एज अ बायोमेडिकल सुपरवाइजर। बट इन अबाउट 8 months मुझे ये रियलाइज़ हुआ दैट फूड इंडस्ट्री में आई डिडन्ट एंजॉय वर्किंग। सो देन आई वेंट बैक टू इंडिया एंड मैंने अपना टीसोल क्वालिफिकेशन स्टार्ट किया। सो टीसोल स्टैंड्स फॉर टीचिंग इंग्लिश टू स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस।
अच्छा।
सो मैंने इसमें पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया बिकॉज आई एंजॉय ट्रेनिंग। आई थिंक आई हैव ऑलवेज बीन पैशनेट अबाउट इंग्लिश।
और वो जो फूड वाली ट्रेनिंग ली थी वो मम्मी डैडी को खुश करने के लिए,
हाँ जी एग्जैक्टली, क्योंकि आई थिंक इंडिया में हमेशा पेरेंट्स को दो करियर
प्रोफेशनल
स्ट्रीम्स
चाहिए।
पसंद होते हैं, या मेडिसिन या इंजीनियरिंग।
तो चलिए, जब आप ट्रेनर बन गई तो आपको क्या दिखाई देता था जब आप दूसरों को सिखाती थी अंग्रेजी, या उनको ये टेस्ट क्लियर करना बताती थी, तो क्या लगता था, क्या कमी है, कैसे उसे दूर किया जाए?
आई थिंक एक तो इंडिया में अवेयरनेस कम है टीचिंग क्वालिफिकेशंस की। जैसे इंडिया में इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज है, एंड सेकेंड लैंग्वेज को सिखाने के लिए भी एवरी लैंग्वेज हैज़ लॉजिस्टिक्स। मैंने देखा इंडिया में अवेयरनेस कम है, लोग अपने ट्रेनर्स अपने आप में इन्वेस्ट नहीं करते हैं प्रोफेशनली। अगर किसी की इंग्लिश अच्छी है डजंट नेसेसरली मीन कि वो अच्छे ट्रेनर होंगे। सो इंग्लिश में डिफरेंट टेक्निक्स हैं बिकॉज एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट लर्निंग कैपेसिटी। सबके अपने इंडिविजुअल यूनिक स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस होते हैं। सो आई यूजली आइडेंटिफाई द वीकनेस एरियाज एंड देन आई टेक टारगेटेड प्रैक्टिस फॉर ईच स्टूडेंट।
चलिए, ये तो आप अपने स्टूडेंट के साथ करती हैं, मगर हमारे सुनने वाले भी जब ये सोच रहे हैं कि भाई एशिया में आप अकेली ऐसी ट्रेनर हैं जिसे ओईटी प्रीमियम ट्रेनर माना गया है, तो आपसे थोड़ा सा ज्ञान हम लोग भी ले लें भाई। कैसे जो ऑस्ट्रेलिया भर के लोग हैं जो ओईटी टेस्ट देना चाहते हैं, वो कैसे कॉम्पिटेंट या प्रोफिशियंट इंग्लिश का टेस्ट पास कर पाएँ, कैसे वो उनके बी ग्रेड सी ग्रेड आ पाएँ, जरा उसके लिए मदद कर दीजिए थोड़ी सी।
OET actually is different from other language tests because इसमें language proficiency के साथ they want to test the ability to speak in a healthcare environment. That is why speaking, writing, reading and listening का format बहुत different है बाकी test से. And for example, in reading there are two parts. Part A is testing the skimming and scanning ability. Skimming is हम जल्दी जल्दी important words कैसे find out कर सकते हैं। Scanning is again an extension of that. Part B is about comprehension. It's about getting an implicit meaning, academic journals. And interesting बात ये है that इसमें the modules are based on medical knowledge. Not really knowledge, I mean the, can I say this again?
बिल्कुल बता।
So in reading, the text passages that we get, they're from the medical literature. IELTS or PT में ऐसा नहीं होता है। In IELTS you can get text from either engineering or even history and so on. In fact, जब मैंने अपना IELTS दिया था, I got a text related to space. And मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है स्टॉपिंग में, so for me it was very hard to perform. Although मेरे 9 bands आए थे because my language is good, but it was really hard for me. I think ये part is good for OET because अगर आपके पास एक ऐसा topic है which you're familiar with, it automatically improves your concentration. So even in listening and reading and writing and speaking, it's based on typical workplace situations in healthcare, which is why it's easier.
अगर तैयारी कर रहे हैं हम reading, writing और speaking की, तो कैसे करेंगे ये बताएं?
रीडिंग के लिए दे वॉन्ट टू टेस्ट डिफरेंट सब स्किल्स, जैसे पार्ट ए टेस्ट द स्किमिंग एंड स्कैनिंग एबिलिटी. उसके लिए जैसे हम मोबाइल पे रीडिंग करते हैं, चाहे आप ट्रेन में जा रहे हो, रीड सम आर्टिकल्स, जैसे हम हेडिंग्स पढ़ते हैं एंड वी फाइंड समथिंग दैट वी आर इंटरेस्टेड टू रीड, दैट इज स्किमिंग एंड स्कैनिंग. फॉर पार्ट बी विच इज टू गेट द इन्फर्ड मीनिंग, इट्स बेटर इफ दे स्टार्ट रीडिंग सम मेडिकल जर्नल्स in an interest, in a topic of their interest. अगर उन्हें psychiatric nursing में interest है तो कोई journal खोल के उसे पढ़े, उसे understand करने की कोशिश करे, because the language used in academic journals is different जो हम normally articles पढ़ते हैं.
और राइटिंग में अक्सर जो स्टूडेंट होते हैं वो स्पेलिंग्स में मार खा जाते हैं, तो उसको कैसे बीट करें, आप कैसे सजेस्ट करते हैं अपने स्टूडेंट को?
In writing, we have one referral letter. And हमें केस नोट्स गिवन होते हैं एंड देन वी आर गिवन अ टास्क. उसमें हमने एक पेशेंट को रेफर करना होता है, आइदर इट कैन बी टू अ जनरल प्रैक्टिशनर या टू अ कम्युनिटी नर्सिंग होम और टू अ सोशल वर्कर. जो वोकैबुलरी यूज होती है, इट्स मोर और लेस सिमिलर टू व्हाट दे आर एक्चुअली यूजिंग. सो आई हैव नेवर रियली एनकाउंटर्ड एनी प्रॉब्लम्स की स्पेलिंग्स में लोगों को प्रॉब्लम आए. हाँ, ग्रामर इज समथिंग दैट एवरीबडी स्ट्रगल्स विद. उसके लिए आई हैव अ कोर्स ऑफ अबाउट 45 टू 60 डेज, एंड इफ दे कंप्लीट दैट नोबडी इज एवर स्ट्रगल्ड विद दीज कॉन्सेप्ट्स.
सो ग्रामर का ज्यादा ध्यान रखा जाता है बनस्पत स्पेलिंग्स के?
नॉट एग्जैक्टली. इसमें 5 असेसमेंट क्राइटेरिया है.
अच्छा, क्या है वो इम्पोर्टेंट बात?
एक है अप्रोप्रिएटनेस ऑफ लैंग्वेज, व्हिच मींस दैट अगर एक ये फॉर्मल लेटर है, सो द लैंग्वेज यूज्ड हैज टू बी पोलाइट, हैज टू बी कर्टियस. हम स्लैंग्स, कॉन्ट्रैक्शंस ऐसी चीजें यूज नहीं कर सकते. देन कॉम्प्रिहेंशन ऑफ स्टिमुलस, व्हिच मींस अंडरस्टैंडिंग ऑफ केस नोट्स. अब इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है, जब हम किसी को लेटर लिख रहे हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड उस रीडर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है. अगर हम सोशल वर्कर को लिख रहे हैं, सो द मेडिकल टर्म्स और द मेडिकल प्रोसीजर्स, उनकी इंफॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन द सोशल एस्पेक्ट्स इन द प्रॉब्लम्स दैट द पेशेंट इज स्ट्रगलिंग विद. इफ वी राइटिंग टू अ जीपी, विल टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट्स ऑफ फायर एंड द मेडिकेशंस एंड द डिस्चार्ज प्लान. सिमिलरली ऐसे और सिनेरियोज हैं जिनके लिए आई ट्रेन देम दैट हाउ टू सिलेक्ट द राइट case notes. The third criteria is overall task fulfillment. It needs to be between 180 and 200 words, the response, the body of the letter. And again, depending on the needs of the reader, how pertinent or how relevant the data selection is and how organized it is. Because if we're writing a formal letter, it has to be organized, you know, into different paragraphs. There should be a logical progression of ideas.
Introduction, body, conclusion.
Yes.
एक और चीज जो हमारे सुनने वाले जानना चाहते हैं, ये बात अक्सर लोग बताते हैं कि भैया ये करो, वो करना बड़ा मुश्किल होता है, कोशिश फिर भी करते हैं, मगर ये कोई नहीं बताता कि क्या नहीं करना चाहिए. तो ऐसी कौन सी टिप्स हैं कि भैया इसमें अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए और काम के काम को कीजिए केवल?
मैंने जो इंडियन स्टूडेंट्स में पर्टिकुलरली एक ट्रेंड ऑब्जर्व किया है, दे आर वेरी इंपेशेंट, सो दे डोंट हैव अ रियलिस्टिक टाइम फ्रेम इन माइंड. मैं यूजली एक प्लेसमेंट टेस्ट लेती हूँ. वेन एवर अ स्टूडेंट कम्स टू मी, इट्स अ डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड आई एनालाइज एंड एवेल्युएट द लेवल एंड देन आई गिव देम अ रियलिस्टिक टाइम फ्रेम इन माइंड दैट आपको 60 डेज का ट्रेनिंग लेना चाहिए, डोंट टेक द टेस्ट बिफोर दैट. बट स्टूडेंट्स यूजली आते हैं मेरे पास, मैम आई बुक द टेस्ट इन 3 weeks टाइम, प्लीज ट्रेन मी. दैट इज समथिंग दे डोंट एंटिसिपेट एंड ये चीज मैं एडवाइस करूंगी स्टूडेंट्स को चेंज करने के लिए.
और शायद रेगुलर और लगातार लंबे समय तक अगर आप कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स होंगे.
यस एग्जैक्टली, बिकॉज ओईटी इज ब्यूटिफुली डिजाइंड. इसमें एक तो आपको रजिस्ट्रेशन में हेल्प हो रही है एंड देन द बाय प्रोडक्ट इज जो आप सीख रहे हो, इट्स इट कैन बी यूज्ड इन योर वर्क प्लेस एज वेल. सो लाइक स्पीकिंग इज अ रोल प्ले, आपको पेशेंट से कैसे इंटरेक्ट करना है उसकी ट्रेनिंग हम देते हैं. इट इंक्लूड्स सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग एज वेल एंड आई ट्रेन पीपल ऑन एम्पथाइजिंग, पर्सुएडिंग पेशेंट्स, नेगोशिएटिंग द यू नो केयर ट्रीटमेंट प्लान्स एंड सो ऑन. एंड दैट इज समथिंग दे कैन यूज इन देयर वर्क प्लेस एंड गेट अ कंपेटिटिव एज फॉर देयर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट.
आखिरी चीज, जो जिन लोगों ने ओईटी का टेस्ट बुक कर रखा है वो जो टेस्ट सेंटर है उसमें घुसने से पहले घबरा रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं, एक सलाह जो आप उनको देंगी वो क्या होगी?
देयर वुड बी टू मैनेज देयर एंग्जाइटी वेल इन द लास्ट फ्यू डेज लीडिंग अप टू द एग्जाम. एंड डिफरेंट पीपल आई थिंक हैव डिफरेंट वेज ऑफ डीलिंग विद स्ट्रेस. फॉर मी पर्सनली इट्स लिसनिंग टू सम कॉमिंग म्यूजिक. And for some, it works if they can meditate or pray in God.
So, आखरी टाइम पे किताबें पढ़ने से कुछ होता नहीं है.
नहीं, बिल्कुल भी नहीं.
शुक्रिया गुरलीन. गुरलीन ओईटी की जानकार हैं और हमें टिप्स दे रही थी. हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया.
थैंक यू.